जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी हाथ के मंजरी तथा भैंसों के सिंह बजा बजा कर उनका साथ देने लगे तथा कुछ अन्य बालक उनके नाच की प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने की इच्छा से कुछ ग्वालों वालों ने उनके नाच की खुलकर प्रशंसा की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तत्कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुं सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे की जो प्रसंग चल रही है श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्रील प्रभुपाद की। तो भागवत की जो प्रसंग चल रही है प्रलंबासुर का वध, तो भगवान श्री कृष्ण दावाग्नि को शांत करने के बाद निकल जाने के बाद दावाग्नि का पान करने के बाद तो किस प्रकार आगे जा करके अपने मित्रों के साथ लीला करते हैं, खास करके श्री सुखदेव गोस्वामी यही बात को बताना चाहते हैं इस प्रसंग में, आज के श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ऊपर जो बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, भयंकर अग्नि, ये अग्नि से ब्रजवासियों को भगवान ने बचाए, और जैसे बचा लिए तो खास करके जो उनके मित्र लोग थे बड़े खुशी हो गए, और खुशी खुशी में और कृष्ण को कृष्ण क्या कर दिया है, कितना बढ़िया हो गया, तो कमाल कर दिया, हम सबको बचा लिया, इतने बड़े आग फैला हुआ था सारे ब्रज के भीतर, तो आपने देखे देखे ये सारे आग को शांत कर दिया और हमें बचा लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र लोग थे उनका तारीफ कर रहे थे, और आगे जाके हमें सुनेंगे एक अध्याय आती है अद्भुत कृष्ण, जहाँ पर ब्रजवासी जो वयस्क लोग हैं, ब्रजवासी जो वयस्क ब्रजवासी हैं अपने आपस में बातचीत करते हैं, किस प्रकार का ये बालक है किस प्रकार का है, ये अद्भुत है, अद्भुत कृष्ण, इस प्रकार के अध्याय हमें आगे जाके सुनेंगे। ये अद्भुत है, दिखता है छोटा सा साधारण सा बालक है, लेकिन उनका कार्यकलाप तो बड़े ही चमत्कार है। तो इस प्रकार कैसे वो छोटे थे, छोटे छोटा था पुतना कुमार दिया, और देखते देखते आग को पी गया, और इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा पहाड़ को उठा के रखा था, और ये सांप के ऊपर नाच रहा है, ये तो बड़े इस प्रकार जब ये अग्नि को पान कर लिए भगवान श्री कृष्ण ने, तो इस प्रकार वयस्क बुजुर्ग जो गोप थे आपस में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो ये कीर्ति है, ये जस है, वो अपने में बात कर रहे हैं, किस प्रकार के बालक का कार्य है, सबको चकित कर रहा है। तो जो भी है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अग्नि को शांत करने के बाद, पी जाने के बाद, तो अपने मित्रों को लेकर के आगे चले, ब्रज के ओर चले। और सारे मित्र लोग उनका बहुत खुश थे। तो जब आगे बढ़ रहे थे, श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र का आगे की लीला ये विषय में कहते हैं, अथ कृष्ण परिवृत ज्ञाति भी, क्योंकि अब थोड़ी पहले, ये अभी अभी पहले भगवान श्री कृष्ण ने भयंकर अग्नि को शांत किया, तो इसीलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने मित्रों के घेर में, अथो कृष्ण परिवृत ज्ञाति भी, कृष्ण क्या कर रहे हैं ना, अपने भक्तों के साथ परिवृत मतलब बीच में रहते हुए, क्यों बहुत बड़ा काम किया है ना, राजा बन गए अभी कृष्ण, लीडर है, पीपल ऑलवेज वांट्स ए परफेक्ट लीडर, आम जनता हमेशा एक परफेक्ट लीडर की रिक्वायर आवश्यक करते हैं, तो अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक लीडर की काम किए हैं, क्योंकि कितने सारे जान बचा लिए ब्रजवासियों को, इतना भयंकर अग्नि का उत्पात से रक्षा कर लिए, इसलिए तो उनको बीच में रख करके सारे ग्वाले मित्र चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बीच में है और उनके मित्र लोग उनके चारों तरफ घिरे हुए हैं, इसी प्रकार उनको आगे लेकर के चले। भगवान को तभी आनंद होती है जब उनके भक्तों के बीच में होते हैं। इसलिए भगवान को कभी कभी यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गोपीजन वल्लभ, जब इस प्रकार का संबोधित किया जाता है तो भगवान को बहुत खुशी होती है। भगवान तभी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जब उनको भक्तों को, भक्तों के साथ संबंधित करके उनको पुकारा जाता है। इसीलिए भागवतम के भीतर गोपीजन वल्लभ, गोपियों के प्रिय हो आप, देवकी नंदन, यशोदास नंदन, इस प्रकार का संबोधित किया गया है। और यही बात को पितामह भीष्म भी कृष्ण के लिए संबोधित करते हैं, हे कृष्ण सखना, हे पार्थ सखे, हे विजय सखे। मतलब आप अपने सखा को विजय देने के लिए, इसी प्रकार पितामह भीष्म भी कुरुक्षेत्र में कृष्ण के लिए इसे ऐसे ऐसे शब्दों में संबोधित करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर परिवृत, किससे परिवृत, न ज्ञाति भी, ज्ञाति मतलब अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा ऐसे घेर में उछल रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्राह्मण मुझे वहाँ पे लेके छोड़ दो। तुम रोज जैसे भगवान कह दिए कि मुझे वहाँ पे लेके छोड़ दो, तो वो ब्राह्मण जो था वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हें रोज गाय का दूध से अभिषेक करता हूँ, रोज मधु डाल करके तुम्हें अभिषेक करता हूँ, कितने बढ़िया खिलाता हूँ, तुमको पसंद नहीं होता है और तुम कहते हो कि मुझे वहाँ पर लेके छोड़ो, वो मोची तुमको जूता सिलाई काम में लगाता है, तुमको वहाँ पर खुशी लगता है। तो भगवान बोले, हाँ तुम इतने रोज मुझे दूध में अभिषेक करते हो और मधु डालते हो मेरे ऊपर, बढ़िया खिलाते हो, फिर भी आपका ये अभिषेक में, आपको बढ़िया खिलाने में मुझे कोई सुख नहीं है। भले वो मोची मुझे अपने जोता सिलाई में काम में कराता है, फिर वहीं पे मुझे सुख है क्योंकि वो मेरे भक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चतुर्वेदी नमे प्रिय, चार वेद जानने वाला मेरा प्रिय नहीं होता है। भले वो कुत्ते की मांस खाने वाला चंडाल के परिवार में जन्म लेना क्यों, यदि वो निष्काम है, यदि मेरे प्रति उनका भाव शुद्ध है, मेरे प्रति जो उनका प्रेम निर्मल है, तो ऐसे भक्तों के प्रति मैं जल्दी आकृष्ट हो जाता हूँ, ऐसे भक्तों के प्रति मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। ये भगवान का गुण है, अपने शुद्ध भक्त के प्रति वो आकर्षित रहते हैं, सारा संसार भगवान के प्रति आकर्षित रहते हैं, ले भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित रहते हैं, ये भगवान का एक गुण है। ज्ञात परिवृत ज्ञाति भी, अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा वो घेर में चलते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परिवृत ज्ञाति भी, ये भक्तों के, भगवान का एक गुण है। और भगवान की गुण क्या है, न मुदितो आत्मभी, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुदितो आत्मभी, मतलब आपका स्वभाव कैसे है ना, आपका स्वभाव हमेशा आनंदमय में, आनंदमय है, आप हमेशा आनंद में रहते हो, आपका स्वभाव ऐसा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रभु आपका स्वभाव कैसे है ना, आप हमेशा आनंद में रहते हो। रमन्ते योगिनां सत्यानन्दे चिद आत्मनि, इसीलिए योगी लोग हमेशा आपका आनंदमय स्वरूप में रमण करते हैं। इसीलिए बहुत बड़े प्रख्यात भक्त बने यमुनाचार्य, वो कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका चरण कमल का रस को लेने लगा और जब जब मेरे मन के भीतर कभी कभी संसार की काम वासना आ जाती है, मैं तुरंत उस तरफ, तुरंत तत्क्षणात तो उसके ऊपर मैं थूक देता हूँ, क्यों ना मुझे आपका चरण कमल की स्वाद का चस्का लग गया है, आपका चरण कमल का जो चरणामृत का, चरण का जो अमृत है मुझे प्राप्त हो गया, मैं मुझे आस्वादित हो गया है। इसीलिए जब ये संसार की काम विकार मेरे मन में आता है तो मैं उसी के तरह थूक देता हूँ, मुंह उठा करके उसके ऊपर मैं थूकता हूँ। ये भगवान की प्रेम की एक विशेषत्व है, सारा संसार को, वस्तुओं को, सारा संसार को एक पल्ला में रखा जाए और भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम का एक कण दूसरा पल्ला में रखा जाए,
भले ये पल्ला में सारा संसार बसा हुआ है, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम, एक प्रेम के एक बूंद, एक कण यदि दूसरे पल्ला में रखे वो पल्ला भारी पड़ेगा। तो ये भगवान का प्रेम का गहराई है, ये भगवान का प्रेम का भारीपन है। एक कण यदि किसी भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम अंकुरित हो गया है, जन्म लिया है, उद्गम हुआ है किसी भक्त के हृदय में, सारा संसार उनको मल बत लगेगा, सारा संसार उनको उनके सामने ये सोने के पहाड़ भी रखो वो उनको पथ समलोष्ट्र, ये चाणक्य पंडित कहते हैं, वो सोने को वो पत्थर ढेले के मिट्टी के जैसे देखने लगेगा। आप जब रास्ते में जाते हो बहुत रास्ते में बहुत कंकड़ पत्थर ढेले पड़े हुए हैं, क्या आप उसको उठा के आपके आपके जेल में रखते हो? क्या नहीं रखते हो। उसी प्रकार भक्त जब भक्त के हृदय में जब कृष्ण प्रेम के एक अंकुर उत्पन्न हो जाता है तो ये सोने को ये पत्थर ढेले की जैसे देखता है। ये कृष्ण प्रेम की एक स्वाद है। तो इसी प्रकार भगवान चल रहे थे मुदी तो आत्म भी, ये मतलब कैसे भी हमारे हृदय में ये प्रेम आ जाए ना, कर्म ग्रंथि निबंधनम, अनेक जन्मों से हमें कर्म के गांठ हमारे जीवन में कर्म के ग्रंथि में हमें अटके हुए हैं, भगवान को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण कमल में पहुंच जाता है, कर्म ग्रंथि निबंधनम, वो कर्म ग्रंथि से, वो कर्म ग्रंथि का बंधन से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर होता है कि भगवान तो मुदी तो आत्मा, वो तो हमेशा उनका स्वभाव आनंदमय है, तो हमें तो उनका अंश भी है ना, हम भगवान के अंश है, तो भगवान यदि इतने उनका स्वरूप इतने आनंदमय है तो हमें भी हमारा भी लक्षण आनंद की होनी चाहिए। लेकिन जब हमें भगवान से अलग हो करके कुछ करना चाहते हैं ना, ये वो आनंद को खो देते हैं। जैसे हमें भगवान से बिछुड़ के हमें कुछ करने दिखाते हैं, तुरंत तत्क्षणात वो आनंद से हमें च्युत हो जाते हैं, वो आनंद को खो देते हैं। आप लोग जानते होंगे हमेशा हमेशा के लिए असुर और देवताओं के भीतर लड़ाई होती है। तो एक बार देवता लोग जीत गए, असुरों के ऊपर जीत हो गया, और जब जीत गए तो सारे असुर लोग बहुत, हाँ देखो हमारे बाहों में कितना बल है, हमारे भुजे में कितनी ताकत है, इस प्रकार का घमंड कर रहे थे। भगवान को पता चल गया कि मेरे भक्त लोग मेरे कृपा से वो लोग असुर के ऊपर जीत हुआ, वो लोग असुर के ऊपर जीत किए, लेकिन अपने बल को लेकर के घमंड कर रहे हैं। तब भगवान को देवताओं को शिक्षा देने के लिए अपने रूप को छुपा करके वहाँ पर प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए और भगवान का शरीर से इतना तेज निकल रही थी, इतने उज्जवल कांति निखर रही थी, तो इंद्र ने कहने लगे वायुदेव जा पूछ के आओ ये उज्जवल पुरुष कौन है, हमारे सामने ये प्रकट हुए हैं। तो इंद्र के आदेश लेकर के वायुदेव आए और पूछे आप कौन हो। तो भगवान जो छुप के आए थे वो कहने लगे मैं तो बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आप कौन हो। मैं भाई वायुदेव हूँ। वायुदेव कहने लगे मैं वायुदेव हूँ। तो भगवान बोले अच्छा वायुदेव आप में क्या शक्ति है। तो वायुदेव कहने लगे मैं निमिष मात्र के सारा संसार में प्रलय ला सकता हूँ, सब कुछ इधर उतर कर देता हूँ, ध्वस्त कर देता हूँ, मेरे शक्ति इतना है। जब वायुदेव इस प्रकार का कहने लगे तो भगवान बाजू से एक सूखा हुआ घास का तिनका को उठाए और वायुदेव के सामने रखे। अच्छा वायुदेव आप में इतनी शक्ति है तो ये तिनका को उड़ा के तो दिखाओ, आप में यदि इतनी शक्ति है सारा संसार में प्रलय ला सकते हो तो ये तिनका को उड़ा दो। तब वायुदेव के ये बस इतना। तो वायुदेव अपने पूरा शक्ति को लगा करके वो घास का तिनका को उड़ाने के लिए कोशिश की, अपने सारा बल को लगा करके वो तिनका को उड़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा भी अपने वो घास का तिनका थोड़ा सा भी अपने जगह से हिला ही नहीं, उड़ना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं। तो भाई जो वापस चले गए और इंद्र जी को कहने लगे ये व्यक्ति कौन है, अद्भुत व्यक्ति है, मेरा शक्ति उनके सामने बेकार हो गया, फैल मार गया। जब वायुदेव इस प्रकार का हाँ वापस आ गए तो फिर इंद्रदेव के अग्निदेव को बोले, अग्निदेव आप जाके पूछ के आओ तो ये व्यक्ति कौन है। तो अग्निदेव आए, अग्निदेव आके पूछे आप कौन हो। तो भगवान बोले मैं तो बताऊंगा मैं कौन हूँ लेकिन आप कौन हो। तो अग्निदेव बोले मैं अग्निदेव हूँ, मैं अग्नि हूँ। तो भगवान बोले आप में क्या शक्ति है। मेरे शक्ति मैं एक क्षण मात्र के सारा संसार को जाल के जला के भस्म कर देता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है। तो भगवान उठाए वो घास के तिनका को और अग्निदेव के सामने रख करके कहे अच्छा अग्निदेव आप में इतनी शक्ति है घास के तिनका को जला के तो दिखाओ। तो अग्निदेव अपने सारे शक्ति को लगा करके घास का सूखा हुआ घास का तिनका, तो सूखा हुआ घास का तिनका को जलाने के लिए कोशिश की। लेकिन अपने सारा शक्ति को प्रयोग करने के बाद भी अग्निदेव का शक्ति निकाम रह गया, वो कुछ काम नहीं किया। तो अग्निदेव भी आ गए इंद्र जी को बोले। तो इंद्रदेव सारे देवताओं को लेकर के जब वो व्यक्ति के पास आके पहुंचे तो व्यक्ति अप्रकट हो गया। तो आकाश मार्ग में माया देवी प्रकट होकर के कहने लगे हे देवता लोग आप जिस प्रभु के शक्ति में इतने बलियान हो और आज आप ये असुरों के ऊपर जीत करके जब घमंड कर रहे थे तो प्रभु आपका शक्ति को तुच्छ दिखाने के लिए आपको तो वहां पर प्रकट होकर के प्रकट हुए थे, आप लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तब देवताओं को समझ में आया सही में भगवान की शक्ति से मैं आज इस संसार के ऊपर राज का जीत हो रही है, हमारा असुरों के ऊपर जीत हमारा हो रही है केवल भगवान के कृपा से। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसी प्रकार भगवान अपने स्वभाव में आनंद में है, लेकिन जीव जब भगवान के साथ संपर्क को काट देता है, क्योंकि भगवान के साथ जीव का जो संबंध है ये संबंध को जब तक नहीं जानता तो दुखी रहेगा। जैसे कि बालक जब तक पिताजी की अंगुली को पकड़ के रखा है तब तक सारा बाजार उनके लिए सुखमय है। जब तक बच्चा पिताजी का अंगुली को पकड़ के रखा है तो सारा बाजार की मिठाई में सुख मिलेगा, बंदूक में सुख मिलेगा, कपड़े में सुख मिलेगा, सारे वस्तु बच्चा को सुख देगा। लेकिन जैसे बच्चा का हाथ पिताजी की उंगली को छोड़ देता है सारा बाजार पड़ा रहेगा, बंदूक पड़ा रहेगा, मिठाई पड़ा रहेगा, कपड़े पड़े रहेंगे, हाथी घोड़े सब सारा बाजार वहीं पर पड़ा रहेगा। लेकिन बच्चा क्या करेगा, रोएगा बाबा कहाँ गया, पिताजी कहाँ गया। तो यहाँ पर हमें समझना है तो सारा बाजार में हाथी घोड़ा में मिठाई में कपड़े में सुख था ना पिताजी का उंगली में सुख था। इसी प्रकार भगवान के साथ हमारे जो संबंध है इस संबंध में जीव का सुख है, ये संसार के साथ संबंध ये संबंध और दुख देने वाला है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये संसार का संबंध को परवाह, इसीलिए कुंती महारानी के प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण में कृपा करके आप काट दो ये संसार के संबंध इतने मजबूत है मैं अपने प्रयास के दौरान काट नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप कृपा करके संबंध को काट दो। फैमिली अट्रैक्शन सो मच स्ट्रांग, पारिवारिक आकर्षण इतनी मजबूत होती है उनको तोड़ के भगवान के ओर चलना बहुत बहुत समय लग जाती है। भवनाम जन्मनाम भगवान भगवत गीता में बताते हैं अनेक जन्म लग जाती है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम है। लेकिन ये कृष्ण प्रेम मिलती कब, ना साधु और गुरु की कृपा जब होती है। हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम मिलती कब, ना साधु वैष्णव गुरु के कृपा जब होती है तब जाके वो प्रेम मिलती है। लेकिन जब हमें भगवान के साथ संबंध से बिछुड़ जाते हैं तो हमें हमारा आनंदमय स्वरूप को भूल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान अपने बहुत आनंदित होकर के अपने स्वभाव में अपने मूल स्वभाव में होकर के अपने मित्रों के साथ वो जा रहे थे। और जब जा रहे थे उनके दोस्त लोग उनके मित्र लोग जो थे सब अनुगीयमान, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अनुगीयमान, अनुगीयमान मतलब भगवान इतना बड़ा अग्निकांड से बचाए ना, इसलिए सारे उनके मित्र लोग क्या करते हैं अनुगीयमान उनका प्रशंसा करते हैं, उनका कीर्ति को गा रहे हैं। और सारे रास्ते में चल रहे हैं, कृष्ण बीच में हैं, चारों तरफ ब्रजबालक हाँ उनको घेर करके चल रहे हैं और उनका कीर्ति को उनको प्रशंसा करते करते जा रहे हैं। हाँ करते करते कहाँ जा रहे हैं, ज्ञाति भी मुदित अनुगीय मान न्यू बीसत ब्रजम, ब्रज की ओर चल रहे हैं। और जब ब्रज की ओर चल रहे थे और भगवान और किसके पास किसके साथ हो करके चल रहे थे ना, गोकुल मंडितम। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जब चल रहे थे इतने खुशी खुशी में आनंद में अपने मित्रों के साथ, और उनके साथ और कौन थे ना, गो गो गैया गाय, गोकुल कुल मतलब गाय का झुंड के बीच में जब भगवान चल रहे थे। और अभी का आधुनिक समाज के मनुष्य कुत्ते की झुंड में चल बीच में चलते हैं, लेकिन भगवान कहाँ पे चलते थे ना, गाय के झुंड के बीच में होकर के चलते थे। गाय को देख के भगवान को बहुत प्रसन्न होते, और भगवान को प्रसन्न करना है तो गाय माता की सेवा करना है, गो सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने की बहुत बड़ी मार्ग है। इसलिए भगवान ब्रज में जब आए थे प्रकट हुए थे गोकुल गाय के झुंड के बीच में होकर के चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह है कि हमें हमारा घरों से गो माता को भगा करके गो माता के जगह में कुत्ते को बांध दिए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे तुम लोग का समाज कुत्तों की समाज है, क्योंकि आप कुत्ते को रक्षा करते, कुत्ते को प्रोटेक्शन देते हो और गाय को हत्या करते हो, कुत्ता को बचाते हो रक्षा करते हो और गौ माता को हत्या करते हो। तुम लोग का समाज कुत्तों की समाज है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया बनाओ गौशाला, गो हत्या के जगह में गो रक्षा के लिए बनाओ गौशाला। इसलिए आज इस्कॉन की संस्था में कितनी बड़ी बड़ी गौशाला बनाए, ये प्रभुपाद जी का आदेश था। ये गाय का हत्या हो रही है, जब पहले भगवान ना सॉरी प्रभुपाद जी ने अमेरिका में पहुंचे देखे गाय का इतना हत्या हो रही है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया बनाइए गौशाला गो रक्षा के लिए। ये भारत ऐसे की तीर्थ भूमि है जहां पर ये दूध की नदियां बहती थी, ये ऐसे जगह है जहां पर दूध की नदी बहती थी। लेकिन जब से ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए ना, क्या लेकर के आए, चाय। यही ब्रिटिश लोग जब से भारत में आए हैं चाय लेकर आए, तब से दूध मिलती ही नहीं है, पानी मिलाया दूध, बासी दूध, फ्रिज का दूध, कल का दूध, पाउडर का दूध, हाँ ये कौन सा दूध, क्या दूध, ये दूध है कि नहीं, थली का दूध, बकरी का दूध कि बकरा की दूध, किसका दूध पता ही नहीं चल रहा, कौन सा दूध आज हमें ये पी रहे हैं हमें भी पता नहीं। ये कितनी बड़ी हमें हमारा कीमत को भारतीय लोग कितने बड़ी हमारा मैंने भैलो को खो चुके हैं, जो हमारा संस्कृति है हमें कितने हमें उसका पीछे कर दिए उसको। जब प्रभुपाद जी ने भारत के भीतर संकीर्तन आंदोलन शुरू किए कोई नहीं देखे, हाँ क्या है हमारा अपना धन कीर्तन संकीर्तन मृदंग करता लेकर के हमारा दादा हमारे जय जय हमारे पापा सब गांव में कीर्तन मृदंग लेकर के रोज बजा कीर्तन करते थे। लेकिन प्रभुपाद जब शुरू किए भारत के भीतर कोई नहीं देखे, लेकिन वही प्रभुपाद जब जाके अमेरिका में वही काम करके वही लोगों को आ करके भारत के भीतर पहुंचा है, तो भारतीय लोग जब कान खुल कर गोरे गोरे लोग जब मृदंग करताल बजा करके भारतीय सड़कों के ऊपर चलने लगे तो भारतीयों की नींद खोला, अरे ये तो हमारा दादा करते थे, ये हमारा जे जे करते थे कि हमारा और कोई ये सब करते, ये हमारे धन है, ये हमारा धन का चाबी ये गोरे लोगों को कैसे मिल गया, तब जाके भारतीय लोग को नींद खोला, जो सोए हुए थे अपने धन को खो करके। जब प्रभुपाद जी वहां पर वो चीज को शुरू कर करे अपने धन को ला करके विदेशी लोगों के द्वारा दिखा, देखो तुम्हारा धन कितने कैसा धन है तुम्हारा, तब जाके भारतीय लोग जगे। तो मैं बता रहा था भगवान ये गोकुल मंडितम गो गो गाय के झुंड के बीच में होकर के चल रहे थे। जब इसी प्रकार का चल रहे थे ब्रज भी क्रीड़ित एवं गोपाल, ऐसे खेल करके चल रहे थे, बच्चे थे, भले भगवान है लेकिन लीला बच्चे की कर रहे हैं। लेकिन सब अपने मित्रों के साथ गाय के साथ जब चल रहे थे, कैसे खेलते खेलते चल रहे थे, जब इस प्रकार चल रहे थे ग्रीष्म नाम ऋतु अभवत। ग्रीष्म नामक जो ऋतु है, भारत में 6 ऋतु होती हैं, आप सुने हैं पीछे, भारत में 6 ऋतु होती हैं, लेकिन 3 ऋतु विशेष करके हमें अनुभव करते हैं, होती है 6 लेकिन अनुभव करते 3, ठंडी गर्मी ग्रीष्म ठंडी और बारिश, ये 3 ऋतु विशेष करके हमें अनुभव करते हैं, और थोड़ी बहुत बसंत ऋतु अनुभव होती है। लेकिन भगवान इस प्रकार जब चल रहे थे तो उसी समय ब्रज में आया, कौन आया, ग्रीष्म नाम ऋतु अभवत, ग्रीष्म ऋतु आ गया। ये जो बसंत ऋतु है उनको ऋतुराज कहा जाता है, और हमारे जो शरीर, हम लोग जो शरीरधारी हैं, जो शरीर को धारण किए हैं, वो शरीर में ठंडी के समय कष्ट होती है, गर्मी के समय भी कष्ट होती है, और बारिश के समय भी कष्ट होती है, लेकिन बसंत ऋतु किसी को कष्ट नहीं देता है। ठंडी कष्ट देता है, गर्मी भी और बारिश भी कष्ट देता है, लेकिन बसंत ऋतु जो है ना वो किसी को कष्ट नहीं देता है, इसीलिए उनको ऋतुराज बसंत कहा जाता है। ऋतुराज ऋतुओं के राजा है, वही ऋतुराज बसंत उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे, भले ग्रीष्म थी और ग्रीष्म ताप देने वाली है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण यत्र आस्त्र भगवान साक्षात रामेण सौ कृष्ण केशव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रामेण सौ केशव यत्र आस्त्र, वहां पर आस्ते थे, कौन थे ना, भगवान वहां पर थे, इसलिए ग्रीष्म अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाया। ग्रीष्म होते हुए भी बसंत ईव लक्षित स, स मतलब ओ ग्रीष्म, श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स बसंत ईव लक्षित, ग्रीष्म भगवान की उपस्थिति के कारण वो कैसे दिखा रहे थे ना, बसंत की जैसे अपने प्रभाव को बसंत ऋतु के जैसे दिखा रहे थे। इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति में तो बसंत ऋतु भी अपने जो स्वभाव है अपने स्वभाव को बदल दिया था, और भगवान चल रहे थे, और भगवान जब ये संसार में प्रकट होते हैं ना, प्रकृति भी अपने को सजा लेती है भगवान की सेवा के लिए। वृंदावन में जब भगवान प्रकट हुए थे, वृंदावन की नदियाँ झरने झिल्लियाँ, ये झिल्लियाँ का जल, नदियाँ का जल को वायुदेव वो जल की शीतलता को लेकर के सारा वृंदावन वासियों को ठंडक दे रहे थे। वायुदेव भी जब भगवान वो समय प्रकट थे, वायुदेव भी वो ग्रीष्म की महीना में गर्मी के दिनों में वो वायुदेव क्या कर रहे थे ना, नदियों झिल्लियों सरोवरों के पानी का ठंडास को लेकर के सारा वृंदावन में वितरण करते थे। वायुदेव भगवान की सेवा, भगवान और भक्तों की सेवा में लगे हुए थे वायुदेव। वृंदावन वासी जैसे भक्तों और भगवान की सेवा में वायुदेव इसी प्रकार का सेवा में लगे हुए थे। खाली ठंडक नहीं दे रहे थे, वो ठंडक के साथ साथ एक प्रकार का सुगंधी भी प्रदान कर रहे थे। जो सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए थे, वो कमल की सुगंध भी वायुदेव सारे ब्रजवासियों को प्रदान कर रहे थे। इसी प्रकार वायुदेव भी वृंदावन में सेवा में लगे हुए थे। जब भगवान इस प्रकार वृंदावन के भीतर अपने मित्रों के साथ इस प्रकार का चल रहे थे, तो क्या देखे भगवान ने, सारे वृंदावन के जितने सारे पेड़ है सब सुगंधित, ऐसा नहीं कि कोई है, जितने वृंदावन के जितने सारे वृक्ष में फूल होते थे वह सुगंधी युक्त होते थे, क्यों, भगवान है वहां पर, जहां पर भगवान है वहां पर हर कोई दिव्य हो जाता है, चेतन हो जाता है। लेकिन हमें 2 चीज मिला हुआ है, ये शरीर भूत प्रकृति का, दूसरा चीज चेतन, इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या भूत भूत आत्मा, ऐसा कुछ एक उपदेश में कहते हैं, हम सब भूत हैं, क्या भूत है ना, पंचभूत का जो भूमि जल ये पंचभूत का ये भूत भूत है, भूत के भीतर एक स्पिरिट है। तो इसी प्रकार भगवान जब वृंदावन के भीतर थे तो इसी प्रकार देखे कि सारे पेड़ों में वृक्षों में सुगंध युक्त फूल लगे हुए थे भगवान की सेवा के लिए, और फल लगे हुए थे कि वृंदावन धाम और भगवान ये क्या है, कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छा करोगे आपको मिल जाएगा। वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण में पहुंच करके जो भी इच्छा करोगे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कल्प वृक्ष है। एक बार नारद जी स्वर्ग जा रहे थे तो कि व्यक्ति देखा, नारद बाबा कहाँ जा रहे हो? नारद जा रहे थे स्वर्ग, व्यक्ति देख के पूछा, ओ बाबा कहाँ, नारद बाबा कहाँ जा रहे हो आप? तो नारद जी बोले, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो व्यक्ति बोला, स्वर्ग जा रहे हो क्या, मुझे लेके जाएंगे? तो नारद जी कहे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो स्वर्ग में पहुंचे और नारद जी क्या किए, वो व्यक्ति को एक कल्प वृक्ष के नीचे बिठा कर बिठाए और बोले, आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, मैं थोड़ा इंद्र के पास काम है, मैं अंदर जाता हूँ फिर काम निपटा के आ जाता हूँ। तो ऐसे कहकर इंद्र ना नारद जी अंदर चले गए और वो व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। और जाते जाते रास्ता में थक गया था तो नींद आ रहा था, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कहने लगा, सोचने लगा, ओह बहुत थक गया, एक बेड आ जाता बढ़िया सा, लंबा होकर सो जाता, जैसे इच्छा किया, वो तो कल्प वृक्ष था, इच्छा करने मात्र से एक बहुत बढ़िया बेड आ गया, लंबा बेड, और वो व्यक्ति लंबा होकर बेड में सो गया। और सोने के बाद फिर इच्छा किया, ओहो और पैर दुख रहा है, चल चल के थक गया, थोड़ा पैर दबाने के लिए कोई आ जाता तो बढ़िया होता, इच्छा करने मात्र से एक अफसर आ करके उनका पैर को दबाने लगा। जब लंबा बेड में सो करके अफसर के हाथ से उनका पैर दबाया जा रहा था तो व्यक्ति सोचने लगा, इसी अवस्था में मेरा पत्नी देखती तो झाड़ू लेकर के आकर के मेरा सेवा कर देती, ये इच्छा करने मात्र से ही उनका पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर के वहां पर पहुंच गया, क्योंकि कल्प वृक्ष है। हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके इस प्रकार इच्छा कर रहा है व्यक्ति, जैसे इच्छा किया उनका पत्नी प्रकट हो गया और हाथ में झाड़ू, और जब देखा कोई है कि दूसरी स्त्री उनका पति का पैर दबा रहा, मार पीटा बहुत लगा झाड़ू में, उनका पति को पिटाई करने लगा, और वो व्यक्ति वो बेड वो अप्सरा को छोड़कर भागने लगा। उसी समय नारद जी हाँ बाहर आ गए और नारद जी बोले, अरे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? वो व्यक्ति बोला, देखो 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 झाड़ू है, ये झाड़ू में पीट रहा है। हाँ, तो नारद जी बोले, अरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, भगवान को मांगना था, ये झाड़ू क्यों मांगा, तेरा भाग्य में ये झाड़ू ही लिखा था क्या? तो इसी प्रकार स्कंद संस्था सारा संसार के लिए एक बहुत बड़ी वरदान है, सारा संसार के लिए स्कंद संस्था ये बहुत बड़ी कितने आसान है भगवान के पास पहुंचने के लिए, प्रभुपाद जी की कृपा से ये संस्था हमारे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इसी प्रकार भगवान जब भगवान कल्प वृक्ष है और वृंदावन के हर भगवान भी कल्प तरु है, कल्प वृक्ष की भांति है, जो भी इच्छा करोगे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार भगवान तो ब्रज में जब अपने मित्रों के साथ चल रहे थे, सारे वृक्ष में फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, इस प्रकार कोयल कूक बहुत सुंदर आवाज कर रही थी, भौरे और मोरे ये बहुत बड़ी आवाज गीत गा रही थी। इस प्रकार वृंदावन का एक मनोरम परिवेश को भगवान जब दर्शन किए तो भगवान की इच्छा हुआ थोड़ा खेल करो वृंदावन के, इस प्रकार के सुंदर परिवेश जब भगवान ने देखे तो उनका मन में इच्छा हुआ खेलने के लिए। ऐसे तो ये संसार उनका खेल घर है, खेल है। कैसे खेले, इधर भगवान कैसे खेलते हैं, अपने काल शक्ति के द्वारा, भगवान इधर अपने काल शक्ति के द्वारा खेलते हैं। इसलिए यहाँ पर हर मनुष्य हर व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा सताए जा रहे हैं, हर व्यक्ति को यहाँ पर ये चार चीज सताती है। और हमारा समस्या क्या है, हमारा समस्या हमारा जीवन की अगले जो वस्तु है उनको नहीं जान पा रहे हैं, अगले हमें क्या आगे हमें क्या करना है वो चीज को नहीं जान पा रहे, यही बहुत बड़ी समस्या है हमारा हमारे जीवन में। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों में से भय ये प्रधान समस्या है। क्यों ना, यहां पर भगवान के काल शक्ति के द्वारा सब कुछ चल रही है, लेकिन वृंदावन में भगवान के दिव्य शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रही है। इसी प्रकार भगवान चल रहे थे, हाँ क्रीड़ो तो क्रीड़ खेल करके चल रहे थे अपने मित्रों के साथ, हाँ चल रहे थे, तो और कौन थे उनके साथ, उनके भाई बलराम अपने मित्रों के साथ, गाय के साथ, अपने गाय के साथ हाँ चल रहे थे। हाँ तो इस प्रकार चलते चलते ब्रज के जंगल के भीतर, वृंदावन के जो जंगल है उसके भीतर प्रवेश किए, और जंगल में जाकर के उनको अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए इच्छा हुई। जब खेल करने के लिए इच्छा हुई तो कोई उनका मित्र उनके सर में मोरपोंख लगा दिया, कोई गले में ला करके एक बनमाला पहना दिया, कोई उनके सर में ला करके कुछ पेड़ों के पत्ता ला करके लगा लिया। इस प्रकार भगवान और अपने मित्रों इस प्रकार सजबाज होकर के आपस में कुश्ती करने लगे। हाँ जब इस प्रकार कुश्ती कर रहे थे तो आगे जाकर के हमें सुनेंगे प्रलंबासुर वो समझ नहीं पाया, ये तो एक साधारण बालक है, छोटा सा बालक है, इसे कुश्ती कर रहा है, हाँ सर में मोर पंख लगाए हुआ, पत्ते लगाए हुआ है, माला पहना हुआ है, एक साधारण का साधारण सा बालक जैसे खेल रहा है, तो प्रलंबासुर नहीं जान समझ पाया और ये सोचा ये तो उसको तो मारना मेरा चुटकी भर की काम है। कुंती महाराण ये बात को कहते हैं कि माया जबनी का आचन वज्ञ दुख जो अवयम न लक्ष्य से मुढ़ा दुर्सन नटो नाट्य धर्म जथा, साधारण लोग आपको नहीं समझ पाते। तो इसी प्रकार प्रलंबासुर आगे जाके सुनेंगे, प्रलंबासुर भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाया। हाँ तो भगवान कृष्ण अपने मित्रों के बीच में होकर के नाच रहे थे और उनके कोई मित्र बाजा बजा रहे थे, हाँ कोई गा रहे थे। हाँ इस प्रकार वृंदावन के भीतर एक आनंदमय हाँ एक माहौल भगवान अपने मित्र को लेकर के बनाए हुए थे, और ये आनंदमय जो एक वर्णन है श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर करके हमको ये आनंद की हिस्सा बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील सुखदेव का प्रयास को हमें समझ करके ये आनंद को हमें लेने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। तो आज एक बहुत बड़ी आचार्यों के प्राकट्य तिथि है, नरोत्तम दास ठाकुर, ये बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ये त्रिशक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुए थे नाम संकीर्तन के द्वारा सारा संसार उद्धार करने के लिए, लेकिन अप्रकट के कुछ समय पहले तीन शक्ति को वो चुने थे, एक है नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरा है श्रीनिवास आचार्य, तीसरा है श्यामानंद दास। ये तीन शक्ति को चैतन्य महाप्रभु चुने थे और गौड़देश में रखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को और श्रीनिवास आचार्य को, और उत्कल प्रदेश उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु को भेजे थे इनाम संकीर्तन के द्वारा ये सबको उद्धार करने के लिए। तो समय हो गया, तो नरोत्तम दास ठाकुर आज के दिन में प्रकट हुए थे, उनकी कई लीलाएँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं। हाँ तो किस प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे, समय नहीं है। तो आज के दिन में यदि हमें नरोत्तम दास ठाकुर के चरण पद्मावती नदी में उनका शिष्य लोग उनका अंग मार्जन कर रहे थे और पद्मा नदी में उनका शरीर विलीन हो गया, अंत समय में जो अप्रकट समय आया वो पद्मा नदी में डूबे हुए थे, पानी में बैठे हुए थे, उनके शिष्य लोग उनका शरीर का मार्जन कर रहे थे। हाँ तो हाँ पद्मा मार्जन करते हुए और पद्मा नदी के जल के भीतर उनका शरीर अप्रकट हो गया। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़े महान पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के, ऐसे पार्षद के चरण में आज यदि हमें प्रार्थना करें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का भाजन हमें बन सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे नरोत्तम दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, इति गौर प्रेमानंदे।